Guru Karuna Sindhu Mahamaya Naru Guru. 너무 어울리십니다. महादेव के बैठने के लिए जगह है, पानी की सब व्यवस्था है। 首先不是因为有病，有因为当时没听见他家人，也不是因为你不上得下，而没办法听。यहाँ तक पढ़ा रहे हैं तो उन लोगों से पहले आचार्य किसी भक्ति वेदांत प्रचारक महाराज जी से अनुरोध करूंगा कि कार्तिक का महीना गुरु महाराज जी का यही इसी महीने के प्रारंभ में तिरुभाव हमारे गोस्वामियों का तिरुभाव कृष्ण की जितनी रासलीला से लेकर के और सब लीलाएं इस महीने में भी इसलिए इसके संबंध में उसे हरी कथा बोलेंगे। उसके पहले उसे प्रमुख का भी विकास कराए हैं उसके संबंध में
Coloring book has come for all your children. Coloring book does avatar of all Shanghai Devi's color drawings. We print 3,000, 1,000 for Europe, 1,000 for America, 1,000 for India. And in India, we hope all the devotees from here and from South America to Russia could take the coloring book and all these books back to their home to distribute. Gurudev has
back pocket.
Sri Parvindavali. Sri Manasusha. Bhakti Tattva Vade. Gauravani Pachari Vade. The three popular ones, the Nectar of Govinda Leela, Bhakti Rasayan, Going Beyond Vaikuntha, Sri Shastaka, Bhakti Rasamrita Sindhu, and Shiva Tattva. Yes. So, GVP, we have a policy to support book distribution. All these books will be distributed at wholesale at print cost. That means no free press costs, no design, no salaries, nothing. Nothing for warehouse storage fees, nothing is being passed on to the book. You're getting the print cost of the book if you're interested in spreading the glories of Chaitanya Mahaprabhu, the fame of our Gurudev all over the three worlds to be distributed at print cost. So this book cost approximately 75 rupees, so devotees could get it if they want a few copies to distribute around the world. So please come to the book table up front, Dr. Tilak Raj Prabhu, myself, and all the devotees, please come forward. There's a minimum order we ask. If you're interested in distributing these books, you should get a few copies of one title or several titles, and there's many specials. You can get the print cost books. We have boxes here too, so everybody's invited. We ask you to please come help and serve Gurudev in this way. He has given his life. He's given everything to writing these books. He is actually here living to write and present the message of our Gaudiya Vaishnavacharyas. So if we can reciprocate with our Gurudev and help him out in distributing his message, it would be a great service we could do for him. So please come forward and let's help out and spread the glories of Chaitanya Mahaprabhu.
হরে কৃষ্ণ। আপনারা বাইরে অনেক কথা পোস্টার দেখেছেন, বাঙালি ভক্তদের জন্য নিবেদন করছি, যারা পুরস্কার নিতে চান তাদের স্পেশাল ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে। নিচে ক্লাসের পর আগামী কয়েকদিন সাধুদের মালতী দিদি আপনাদের রিসিভ করবেন, যারা নিতে চান তারা ওখানে যাবেন, ওরা মালতী দিদির কাছে সাধনা করতে পারেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল নট লাইক ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি, সো ইউ আর গিভিং স্পেশাল ডিসকাউন্ট ফর বেঙ্গলি ডিভোটি অনলি and distributed by Maruti Didi of Kalti. So I request you, Western devotee, they should not go there and take the chance. So only Bengal devotee will go there. Hare Krishna.
Also, we want to advise all the parents to get some color books for their children. Otherwise, we have to send your children with, accompanied by yourself, to Vrindavan. They are playing on the domes, the children. Today we had to send one gang leader, ring leader, back to Vrindavan. If we see again children playing in dangerous position, especially on the domes, very dangerous, a lot of people are informing us. Yeah. So get any color books so they are busy or keep them under control.
and all other sannyasis,
By the grace of my Gurudev and Parambudwar, Pamma and Narayan and all of that, first of all, who came to do the Vrajmandal Parikshama, there are 64 kinds of bhakti. In our deep dham parikrama, Sri Vrajmandal parikrama are one of two of them. If we do the Vrajmandal parikrama, we gain the fruit of sufficient lotus feet of Lord Radha Krishna. If we do parikrama on the fourth, we gain fully fruits of sufficient Lord Radha Krishna. And if we do parikrama by car or all others, you will get something. Paramaratana Sri Rupa Goswami described his most precious most bhakti san sindhu. There are 64 kinds of bhakti and there are 5 kinds most special. Sadhu Sangha, Naam Kirtan, Bhagavat Shravan, Mudra Vas, Srimukti Shraddha Seva. Sabal Sadhan Shrestha, a Pancha Anga, Krishna Prem Jamai, Pache Alpa Sangha. If you go to the sadhu, if you sadhu something, sadhu, if we listen something, teachings of sadhu, we will get bhakti. If we chant the holy name of Radha Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara Sivasati Gaurabhaktavinda, and Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. If we chant this name, we must get the service of Sri Gaurabhaktavinda Nityananda Radha Krishna. This is the distinct goal of our life. Harvesting of God. That is goal in Tamil Radha. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama in the Kevalam. Kalo Nastiva, 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 Nastiva. Only chanting the name of Lord Radha Krishna, you must proceed to the lotus feet of Lord Radha Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, Bhagavan Radha Krishna came as Lord Chaitanya in this Kali Yuga before 520 years. Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, taking the color of
Exactly. Kirtan Mahaprabhu ended this slok. Harinam, 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 harinam. This is right. He was ended and learned something. Then, Prabhu Maya Krishna Seva Nam Sankirtan Sri Guru Sikra Bhavi Sikrishna. Not only that you buy the whole day, not all the day, you know, you can't get it. Sankirtan Devati, he should do Krishna Seva, Sati Seva, Krishna, and Chant Guru. Without the Sati of Vaishnava, you can't read in the Lotus Feet of Lord Krishna. So, we should start So we should chant Vaishnavas and chant Harinam simultaneously. Otherwise, we chant the Sati Seva Lord Krishna. Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhakti Shravana. We should listen the teachings of Srimad Bhagavatam. And Sri Chaitanya Charitamrita, Sri Chaitanya Mahaprabhu, and all of that bhakti shastras. Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavata Shravana, Mudra Path. And we should live in Mathura Mandal. And there is no difference between Raja Mandal and Gold Mandal. So we should live in this Raja Mandal and we should live Gold Mandal Bhakti Dham. Because there is no difference today. There is no difference between Gold Mandal, Bhakti Dham and Vrindavan, Gold Mandal, Raja Mandal. Living at Mandala, we should parikrama, 84 cross Rajamandal and divine Lila of Sri Radha Krishna. Atman Brahma, God is full of joy. If we look and visit the Lila of Lord Radha Krishna, we must gain joy. And our life, human life will succeed. We came here only to practice bhajan of Radha Krishna Govindana. Even being human in that, this is the life of this. This is animal life. Even we marry and die. This is the animal life. We do not come here only to release animal life. We came here only to satisfy Lord Radha Krishna. If we serve, I will not go with the Lord Radha Krishna. Our life is successful. Back to God and back to home. This is not our home. Our home is only food of the Radha. स्पेशल काइंड्स ऑफ भक्ति हर संग हम कीर्तन भक्त सन गुजरात और श्रीमूर्ति सरदार श्रीमूर्ति एंड टू शामिल नित्यानंद राधा कृष्ण जो पूजा एवरी डे एंड वी शुड रिमेंबर तुलसी एंड If you practice this five times of bhakti, we must be the Buddha Spirit of Gurudhyana Radhani.
हरे कृष्ण राधा सम्भव सब शक्ति सब निवास राधा मानव प्राप्त আজ আমি আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি এই গোবর্ধনে গোবর্ধন গৌড়ীয় মঠে এসে ভক্তবৃন্দের দর্শন লাভ করে আমি আজ পরম ধন্য হলাম। বিশেষ করে আমাদের শিক্ষার হিসেবে নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের দর্শন এবং সমাবাদ করে আমি আমার নিজেকে বড় সৌভাগ্যের কথা বৈষ্ণব কৃপা বহু ভাগ্যের কথা। এই ব্রজমণ্ডলে পরম পূজনীয় শিলের স্বামী ভক্তিকান্ত নারায়ণ গোস্বামী মহারাজের অনুমতি আমরা সকল ভক্তবৃন্দ বিভিন্ন দেশ বিদেশ থেকে এসে যে যোগদান করে এই ব্রজমণ্ডল গোবর্ধন দর্শনের ধাম দর্শনে আমরা লাভ করেছি। হরিকথা বলবার তো আমার যোগ্যতা নাই, বৈষ্ণবের হরিকথা বলবে যে তারা বিভিন্ন দ্বারা ভিন্ন আমার আপনারা জানেন শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস করে শূন্য নিশ্চয় সমন্বয়হীন ভক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যেহেতু মাধব বলছেন সমন্ত এরা ভাবে তারিখ কিছু নাই তবে আর সব মরে আমার। সুতরাং সমন্ত এখানে সেখানে নিষ্কাম অবশ্যই এটাকে রাখবে, শুধুমাত্র নিষ্কাম অত শান্ত ভক্তি ভক্তি সিদ্ধি কামের সঙ্গে আসান। শুধুমাত্র ডেফিনেশন হচ্ছে অন্য বিষয়ে আসেন না, তিনি ওই প্রকার সম্বন্ধীন যেহেতু নিষ্কামের কোন সুতরাং নিষ্কাম সম্বন্ধে যুক্ত হইতে হবে ব্রজবাসী আমি বিশেষ কিছু বলতে ছিলাম মহারাজের একটু আগে আমি
ধামের হচ্ছে উৎসব আশ আশ্রয় বা আধার। আমরা আধার এবং আগ্রহ দুটি শব্দ অভিধানের মধ্যে পাই। গ্লাসে জল আছে, সেখানে জলটিকে বলা হয় আগ্রহ এবং জলের পাত্রকে বলা হয় আধার বলা হয়। এই ধাম হচ্ছে আধার বলা হচ্ছে। এই যে ভগবান লীলাপুরুষোত্তম লীলাময়, তার লীলার জন্য স্থানের বা আধারের প্রয়োজন রয়েছে। চিরঞ্জীব সিংহ তিনি তার সন্দর্ভ যে বলেছেন যে ধাম তাহাকে বলা হয়, সেখানে বাংলায় বলা হয় ভগবান যেখানে লীলা করেন তাহাকে ধাম বলা হইয়া থাকে। এবং এই যে ধাম সম্বন্ধে শিলজী কশিপাল আরো বলেছেন যে অপ্রাকৃত যে বৃন্দাবন ধাম বা অপ্রাকৃত যে নবদ্বীপ ধাম, যে প্রাকৃত যে গৌর বৃন্দাবন বলা হয় বা প্রাকৃতিক যে স্থান নবদ্বীপ রয়েছে সেখানে এসে সংক্রমিত হয়। ভগবান যখন আসেন তখন ধাম সহ সেখানে অবতীর্ণ করেন। সেখানে জীবেশ্বর বলছেন ওই অপ্রাকৃত ধাম প্রাকৃত জগতে এই স্থানের সঙ্গে সংক্রমিত হয়। এই কথা জীবেশ্বর বলে ধাম হচ্ছে অপ্রাকৃত। এই ধাম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সেখানে বলা আছে আধার শক্তি ঘনীভূত অবস্থাকে ধাম বলা হয়। আধার শক্তি ঘনীভূত অবস্থাকে ধাম বলা হয়। আমরা সাধারণত বলি যে সন্ধি শক্তি থেকে ধামের উৎসব, যে সৎ চিত আনন্দ, সৎ থেকে সন্ধিনী, চিত থেকে সন্ধিশ, আনন্দ থেকে লাগিনী, এই যে সন্ধিনী হচ্ছে শক্তি। সন্ধি শক্তি থেকে ধামের উৎপত্তি বলা হয়। কিন্তু সেখানে বিশেষভাবে বলেছেন যে আধার শক্তি ঘনীভূত অবস্থাকে ধাম বলা হইয়া থাকে। বলছে আধার শক্তি কি বিশুদ্ধ সত্যি যখন সন্ধিনীর প্রাধান্য তাহাকে বলা হয় আধার শক্তি। বিশুদ্ধ সত্যি যখন সঙ্গীতের প্রাধান্য তাহাকে বলা হয় আত্মবিদ্যা। আবার বিশুদ্ধ সত্যি যখন রাহাগিনীর প্রাধান্য তাহাকে বলা হয় গুচ্ছ বিদ্যা। এইখানে আমরা দেখছি যে যদিও সন্ধি শক্তি বলা আছে সমস্ত পরিবারবৃন্দ এমনকি মা যশোদা আদি সবাই সন্ধি শক্তির উৎপত্তি হয়েছে, কিন্তু সন্ধি শক্তিটা প্রাধান্য সেই প্রাধান্য হচ্ছে আধার শক্তি। সেই আধার শক্তির গন্ধুষ অবস্থাকে বলা হচ্ছে ধাম বলা হইয়া থাকে। শক্তি মানে হচ্ছে অমুক্ত অবস্থা, একটা মুক্ত অবস্থা আর হচ্ছে একটা অমুক্ত অবস্থা। যখন শক্তি বলা হবে তখন হচ্ছে অমুক্ত অবস্থা, যখন অনুভূত অবস্থা হল তখন হচ্ছে মূর্তি মুক্ত বলা হয়। এই যে ধাম আমরা পরিক্রমা করছি, এই ধাম সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলেছেন যেমন নাম অপরাধ আছে বা বৈষ্ণব অপরাধ আছে, সেইভাবে এইখানে হচ্ছে ধাম অপরাধ আছে। যদি ধাম অপরাধ গুলো আমরা করি তাহলে ধাম পরিক্রমা করে আমাদের কোন লাভ নেই। সেখানে যেমন নাম অপরাধ দশটি বলা হচ্ছে বা বৈষ্ণব অপরাধ ছটি বলা হচ্ছে, এবং সেখানে এই ধাম অপরাধ সেখানে বলা হচ্ছে দশটি হচ্ছে ধাম অপরাধ। তার মানে প্রথম যে ধাম অপরাধ বললেন, এক নম্বর হচ্ছে যে সাধু বা গুরু ধাম প্রদর্শন প্রদর্শন করাচ্ছেন তা যদি নিন্দা করা হয় তাহলে সেটা হবে ধাম অপরাধ। এই ধামকে যদি অনিত্য জ্ঞান করা হয় তাহলে সেটা এক প্রকার ধাম অপরাধ। ধামে থেকে যদি বিষয় চিন্তা করা হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে ধাম অপরাধ। ধামে যারা বসবাস করছেন তাদেরকে যদি জাতি বুদ্ধি করা হয় তখন হয়ে যায় ধাম অপরাধ। এবং ধামে থেকে যদি অর্থ উপার্জন করার জন্য চেষ্টা করা হয় তা সেখানে হচ্ছে ধাম অপরাধ। আবার মহিমা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে সেই সকল শাস্ত্রকে নিন্দা করা হয়, সেও এক ক্ষমা করা। বৃন্দাবন এবং নবদ্বীপ এগুলি ভিন্ন অভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান করলেই তখন সেখানে হচ্ছে ক্ষমা করা। আর ধর্মে একটা অর্থবাদ রয়েছে, ধর্মে যেমন নবদ্বীপের একটা অর্থবাদ রয়েছে, ধর্মেরও একটা অর্থবাদ রয়েছে। অর্থবাদ মানে হচ্ছে যে ধর্মের যে মহিমা সে মহিমাকে যদি স্বীকার না করা হয় তাহলে সে অর্থবাদ বলা থাকে। যেমন বৃন্দাবন ধর্মের যে মহিমা বা নবদ্বীপ ধর্মের যে মহিমা, পুরী ধর্মের যে মহিমা, সেই মহিমাগুলো যে যার ক্ষমতা আছে সেগুলো স্বীকার না করলে সেটাকে বলা হচ্ছে অর্থবাদ বলা হয়। এইভাবে দশটি ক্ষমা করা এখানে রয়েছে। তীর্থযাত্রার পরিশ্রম শুধুই মনে রাখুন, এই যে কথাটা আমরা শাস্ত্রের মধ্যে তীর্থাকে বলছি তখন ওটা বলা হয়েছে তীর্থযাত্রার পরিশ্রম শুধুই মনে রাখুন। অর্থাৎ সেখানে বলা হচ্ছে যদি গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে আমরা যদি খান পরিক্রমা না করি, যদি আমরা স্বতন্ত্র ভাবে স্বচ্ছ ইচ্ছায় খান পরিক্রমা করি তাহলে যথার্থ খান পরিক্রমা হয় না। এইখানেই বলা হচ্ছে এখানে মনে ভ্রম বলা হচ্ছে। অতএব সবসময় আমরা চেষ্টা করবো গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে যেন আমরা খান পরিক্রমা করতে পারি। এই বলে আমি এখানে আমার বক্তব্য সমাপন করছি।
সব কিছু ভাত ভাবতে যান মানুষজন মানুষ Shri Jiva Swami describes that place where Lila Purushottam Krishna performs his pastimes, that place upon which he takes shelter, or which is the platform for his pastimes, is called Dham. Therefore, Sri Vrindavan Dham or Sri Nandri Dham are both to be considered completely non-material, non-mundane or apocryphal, transcendental. It is not manifested by the Maya Shakti. Rather, we should understand that the Dharma is manifested by Bhagavan's Sandini Shakti or Adar Shakti. Krishna himself consists of Satchidananda, meaning he consists of Sandini Shakti, Samvit Shakti and Adini Shakti. Therefore, this Vrindavan Dharma is manifested by his Sandini Shakti or his Adar Shakti. Sometimes it is manifest and sometimes that Dharma is unmanifest, but in both conditions it is to be considered completely non-material. Therefore, we should consider in staying in Dham there are some offenses to be avoided. Like there are 10 offenses to be avoided against when one is chanting Harinam, there are 6 offenses to be avoided in the association of Vaishnavas. In the same way, there are 10 offenses to be avoided in staying in Vrindavan Dham. First, to commit offense to the Guru who reveals the Dham is the first Dharma Parada. To reside in a holy place like Vrindavan and to have any material thoughts or desires. To see Vrindavan Dham with Prakriti, with some mundane intelligence. To find fault in the Dham. To blaspheme the Shastras which glorify Vrindavan Dham. To consider Vrindavan and Navadvip to be different, this is also Dharma Parad. To consider the glories of the Dham that have been mentioned in the Shastras to be exaggerated, this is called Atavad. This is also to be avoided. To perform any mundane activities in the Dham, to perform any sinful activities in the Dham. These 10 types of Dharma Parad are to be avoided. Therefore, we are doing our Vrindavan Parikram. We are confessing with these 10 offenses, then we cannot achieve the result. Therefore, Sri Narottam Das Thakur said, Anya Parishram Ananya Parishram Satramaniya Param. Visiting other places is only a headache. Therefore, why we come to the Dham, Narasam Das Thakur said, simply visiting other theatres is only a headache. But we should understand that Vrindavan Dham is not a theatre, it's the source of all holy places. Completely transcendental. Therefore, we should stay under the guidance of Gurudev and Vaishnavas, then this verse does not apply to us. And if we stay under the guidance of Gurudev and Vaishnavas and perform our Vrindavan Parikram, then our Parikram can be called successful.
सबके संबंध में बोले नमान विष्णु को आदाय असहाय सिंह शिष्यवाद भक्ति प्रज्ञान ये सब योजना अति मात्र चरित्राय सचानंद पाय जीव की सदाता है नमान विष्णु को आदाय कृष्ण कृष्ण भूतले शिवजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती चुनाव वंशा बल दुर्गस्य कृपा हिंदु एव च पतितानां पावनेषु वैष्णव भूतले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाजन गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 सर्वाधिकारायण चतुर्पाद विष्णुगण श्रीचरण असंकृति सिद्धांत सरस्वती सभावती परिप्राजगतृंद मातृमण्डले हामी सबै जगतको सन्नानी धाम परिक्रमा कथा हाम्रा सदा गौर पूर्णिमा समय सोधि आ ए दामोदर गर्दै ए ब्रज ब्रज एवं गौर अभिन्न बनाए किन्तु प्रत्येक कार्यालय भगवती स्थानले यसको विशेषत्व आछ এটা অস্বীকার করা যায় না রসগত বিচার অর্থাৎ আনন্দগত বিচারের তারতম্য হয়ে গেছে আমরা যখনই ধাম পরিক্রমা করব ধাম পরিক্রমার একটা বড় বৈশিষ্ট্য এই নবরামন্ত্রী জাতি তো দিয়া থাকে মুখ্যত শ্রবণ কীর্তন স্মরণ বন্দন পাদ সেবন আত্মনির্ভর এইগুলো বিশেষভাবে পরিচালিত হয় আমরা গুরু বৈষ্ণব নিকটে শ্রবণ করার সুযোগ পেলে আমাদের অন্তরে যে সমস্ত আঘাত অন্ধকার তমসাচ্ছন্ন বিদীপ্ত হয়ে যায় আমরা শ্রবণ করলে তখন কীর্তন আর কীর্তন হলে কীর্তন প্রভাবে স্মরণ একটার সঙ্গে একটু অঙ্গাঙ্গিক সম্পর্ক রয়েছে তার জন্য ধাম পরিক্রমার দিকে বিশেষত অনর্থক জীবের পক্ষে এই ধাম পরিক্রমা অবশ্যই পাচ্ছেন আমি একা একাই পরিক্রমা করবো একা একাই দর্শন করবো ফল কিছু হতে পারে, কিন্তু যেটা মুখ্য ফল সেটা লাভ হয় না। গুরু বৈষ্ণবের কাছে আমরা যতদিন পর্যন্ত শ্রবণ করি এবং সেবায় আমরা উদ্বুদ্ধ হই নাই, এই সেবা না হলে কিন্তু কতদিন আসতেই পারে না। কখনো আমরা শ্রীমদ ভাগবতের একটি দৃষ্টান্ত দেখতে পাই, নন্দ্র মনে কি অভিশপ্ত হয়েছিল দেবশ্রী যে নিজের সব ভুলে গেছিল কি মহিলা পাচ্ছে সব ভুলে গেছে, এবং ওই সময় দেবশ্রী আলো সেখানে রয়েছে, দেবশ্রী আলো এসে ওদের ওই অবস্থা থেকে যখন যেরকম ভাবে সেটি প্রয়োগ করার প্রয়োজন তখন তারা সেরকম ভাবে সেটি প্রয়োগ করেন। কি বললেন না করতাম সে মঙ্গল করে অভিশাপ দিলেন, যাও সেই যখন অভিযোগ করলেন তার দর্শনের স্পর্শনে তোমার মুক্ত হতে পারবে, তাই পরবর্তী আলোচনা বলছি। এবং পুতুল কৃষ্ণ যখন ওই ভক্তের কথা রক্ষা করার জন্য ভৃত্যরূপী জগরের কাছে গিয়েছিলেন এবং উদ্গত সমন্বিত আকর্ষণ করছিলেন, এবং ভৃত্যরূপী যখন গঠিত হয়েছে এবং সেইখান থেকেই ওই নরপর মণিপীর জগত কৃষ্ণে আরুহ্য ভগবান কৃষ্ণ যাত্রা বৃদেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকে এখানে তার স্তর করলেন। দেখুন কেন বললেন না, এ তুমি সেবা করে না, ওইখানে একটু বৈষ্ণব সমূহ হয়েছে মাত্র, বৈষ্ণবের অনেক কৃপা হয়েছে, ওই চান্সের সুযোগে এসেছিল বলে, কিন্তু সুযোগ আসার সত্ত্বেও যেহেতু ভগবতার শ্রবণ করেন না, যেহেতু গুরু বৈষ্ণবের সেবা করেন না, এই জন্য তাদের হৃদয়ের মধ্যে স্ফূর্তি হয় না, তার কাছে প্রেম ভক্তিটা তারা করলেন। অথবা নাই যদি এও বলতেন যে আপনার নির্দেশ আপনি আদেশ করুন কি করবো, আমি বলতে আসবে তো না কোনো আসেন, কিন্তু ওখানে দেবশ্রী নারদ পর্যন্ত অভিশাপ দিয়েছিলেন, পরকালে বর দিয়েছেন, তো ভক্ত যদি অভিশাপ দিয়েও তাদের ভগবত দর্শন ওদের কোনোদিনই হয়তো কৃষ্ণ দর্শনে দূরে আসত না, ভক্ত অভিশাপ দিলে তাকে যে অবস্থা হয় ভক্তের কৃপা, এই জন্য বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়া মহান এর মতো আমরা প্রতি হবে এটি তাৎপর্য। এখন সেবাটা কখন হবে, সেবার মূল ভিত্তিটা কোথায়, সেটা হলো গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য, গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য ব্যতীত সেবা হয় না, সেবামুখী জীবা জগত করেছেন, সেবাটা কখন হবে না গ্রহণ করতে হবে এবং ভক্তের সেবা হতে হবে, আমরা ভগবানকে দেখতে পাই না কিন্তু ভক্তকে তো দেখতে পাই, তাহলে তারা আমার দেবস্থানে ঘটিয়ে দেন এই সুযোগ, এই জন্য মুখ্য বৈষ্ণব সেবা করে বা গুরু বৈষ্ণব সেবা করতে হবে, গুরু সেবা মানে বৈষ্ণব সেবা, বৈষ্ণব সেবা মানে গুরু সেবা সংকল্প, এটি সেবা করলেই আমাদের যে সমস্ত অন্যের কাছে দাবি উপরন্তু তাদের ওই বিবাহ যখন প্রতিষ্ঠিত হবে তখন আমাদের অপ্রাপ্য পরিবর্তন থাকবে না, আর তখন অনর্থকে আমরাও আসবে না, সেবা করলেই এই অনর্থটা আমরা নিযুক্ত হয়ে যায়, যদি নাম সংযুক্ত হইয়া বৈষ্ণবের আনুগত্য নিয়ে যদি আমরা সেটাকে দাসন করতে পারি বা প্রয়াসী হই তখন আমরা ধাম পরিক্রমা করতে গেলে সেখানে গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য প্রশ্ন আসবেই, সেখানে হরিকথার প্রশ্ন আসবেই, সেখানে শ্রবণের কথা আসবে, সেখানে বর্ণনার কথা আসবে, সেখানে মাঝে শ্রবণের কথা আসবে, সাধু ভগী আত্মনিবেদনের কথা সেখানে আসবে। যদি আমরা আনন্দিহীন হয়ে এই করে দাদন করতে যাই তখন এর মধ্যে কিছু না কিছু অন্তরা থেকে যাবে, কিছু না কিছু তার পরিবর্তী অবস্থা এসে যাবে। এই জন্যে গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে ধাম পরিক্রমা নাম গ্রহণ আমাদের সকলে, যদি আমরা সেবা করি বাহ্য দর্শনের সেবার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু নাম গ্রহণ করছি না তখন সে কর্ম হয়ে যাবে। আবার নাম করছি বলে সেবা দেব না সেটা তখন পরিপূর্ণ অবস্থা আসবে না, কারণ শব্দ বাহিরে বলে নাম তো নয়, এই অবস্থা আছে। এই জন্যই এই শ্রবণগুলি করলে বৈষ্ণব মানের ভিতরে আমরা শ্রবণ করার সুযোগ পেলে আমাদের কোথায় কোথায় যে অন্তরা হতে পারে সেটা সেটা থেকে আমরা সজাগ হওয়ার সুযোগ পাবো বা আমরা কতক্ষণ কাজ করবো। এই জন্য আমরা অনেক সময় প্রেমের কথা বলি, বলি প্রেমের মুখের বস্তু কি সেবা, সেবাটাই তো হলো প্রেম। প্রেম তো মুখে বলে করা হয় না, তার জাগনের দ্বারাই প্রেমের কথা আসে। সুতরাং জাগনটা যদি না হয় আমরা যদি সেই সেবাটা না করি তাহলে প্রেমের কথা ভাবাটা বাতুলতা নাই। যা আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় ধামে এসে গুরু বৈষ্ণব পালের নিকট আমরা হরিকথা শ্রবণ করার সুযোগ পাই, ধাম পরিক্রমা করার সুযোগ পাই। এই এই জন্যই গুরু বৈষ্ণব পান প্রতি বৎসরে অন্তত দুই একবার এই পরিক্রমার ব্যবস্থা করে থাকেন। তাই জন্য অনর্থ জীবের মঙ্গলদায়ক এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই। যা আমি আর বেশি কিছু বলতে চাই না, আমার যোগ্য আবিধায়ক আমার কোনো কারো অধিকার নাই, সর্বোপরি নিজে যা শুরু করবার সেই যোগ্যতা নাই। তার জন্য দুর্গৈষ্ণব পরের চরণে আমার সকল প্রার্থনা তারা আমাকে সেই যোগ্যতা অর্পণ করুন, যাহাতে দুর্গৈষ্ণবের আনন্দিত নিয়ে আমি সেই সেবা জীবন লাভ করতে পারি।
মধুসূদন মহারাজ, শিষ্য মাধ্যমে বেদান্ত আচার্য মহারাজ, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन करूं। पूजनीय सन्यासी वृद्ध, समस्त सज्जनों, माता बहनों, सभी वैष्णव, सभी को मेरा प्रणाम निवेदन है। अभी अभी वैष्णवों ने धाम तत्व के विषय में बहुत सुंदर विवेचन दिया है, क्योंकि धाम भगवान का निवास स्थान है। एक समय जबकि तीर्थराज प्रयाग को तीर्थों के राजा बनाया गया, तो उस समय पे तीर्थों के राजा है सभी को अपने अनुशासन में बनाए रखते हैं। किसी ने उन्हें छेड़ दिया, अरे भाई आप तो राजा हैं, परंतु मथुरा वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंड मानसी गंगा कुसुम सरोवर पावन सरोवर ये सब तो आपके पास आते ही नहीं है, पर कभी आपकी बात मानते नहीं, तो आप कैसे राजा बने। कुछ समय उन्होंने सोचा कि बात तो सही है, ये लोग तो हमारे पास आते नहीं है, हम क्या करें। तब भगवान श्री कृष्ण से जाके निवेदन किया, तो भगवान ने कहा कि प्रयागराज मैंने तुम्हें राजा बनाया, परंतु अपने घर का मालिक नहीं बनाया। ये मथुरा वृंदावन तो मेरा घर है, तो इस घर का आधिपत्य तो मैंने तुम्हें नहीं दिया, तो तुम तो राजा हो सभी तीर्थों के राजा, ठीक है इस बात को तुम समझो। उस समय प्रयागराज नदसी हो करके चले आए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वृंदावनम में देहरूपगम पंच योजन में वास्ते वृंदावनम में देहरूपगम, पांच योजन में स्त्री द्वारा यह वृंदावन मेरा शरीर है। और राधा जी कहते हैं राणे हृदयवान मोर मन वृंदावन, दूसरों का मन तो मन है और हमारा मन वृंदावन है, मन और मान एक रीते जानता हूं। राधा जी ने अपने स्वरूप से इस धाम को वृंदावन को ब्रजभूमि को प्रकट किया है, जो कि मधुवन तालवन कुमुदवन बहुलावन माघवन भद्रवन कम्बवन खेलवन खदिरवन बिहार वन लोकवन आदि वन और उपवनों के द्वारा विभूषित किए ब्रजभूमि। यह ब्रज चौरासी को राधा जी ने कृष्ण के लिए प्रकट किया है, कृष्ण की लीला विहार भूमि है, जो कि उनका निज निवास था। और परमेश्वर गीता में क्या कहते हैं, गुरु को नाम निज धाम नी तदे चतस्य, ये गुरु धाम जो है भगवान का अपना निज धाम है। परंतु भगवान ने ये नहीं कहा कि ये धाम मेरा कृष्ण धाम है, गुरु धाम, गुरु यानी गवाम लोक इति गुरु गायों का लोक, मैंने अपने लोक को गायों को दे दिया और मैंने अपने लोग को गो गोपी ब्रजजन ब्रजवासियों को दे दिया, अब लेकर के मैं उनके घर का बालक बन गया, मैं उनके घर का बालक हूँ, किसी के सखा और किसी के प्रियतम बन करके। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो पर ब्रह्म लीला विलासी लीला पुरुषोत्तम पे लीला विहार कर रहे और ब्रजवासियों के ब्रजजनों के लीला रस प्रेम रस का आस्वादन कर रहे हैं। ऐसे रसविलास से श्री कृष्ण स्वयं रसिक शेखर अपना सब कुछ दान दे दिया, बोले कि मैं उन्हीं का ऐसे भगवान परम प्रेमी और प्रेमी बन करके सबके अधीन बन करके जहां पर लीलाएं की है, ये है ब्रज धाम। और इस ब्रज धाम में ब्रज विलास से श्री कृष्ण लीला विरोध करते हैं, उन्हीं का धाम है जहां पर कृष्ण नंदिनी राधा जी के जो कि परम रसिका शिरोमणि उन्हीं के प्रेम रस का आस्वादन किया करते हैं, महाभाव रस के आस्वादन में उनकी सारी लीलाएं। इसलिए कृष्ण की जितनी वत्सता है सभी वत्सताओं में कृष्ण ने कहा, और भागवत में देखा जाए कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं प्रेमी हूं, मैं अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र मैं भक्तों का पराधीन, मैं मेरे भक्तों के सामने कुछ भी नहीं चलता है, वे तो मेरे हृदय मैं उन्हीं का हृदय हूँ, वे मेरे बिना किसी को नहीं जानते, मैं उन्हीं के बिना और किसी को नहीं जानता, उन्होंने जैसे सर्वस्व मेरे लिए समर्पण किया मैं भी अपना सर्वस्व उन्हीं को लौटा दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। भगवान भक्तों की वत्सता को स्वीकार किए, अधीनता को पराधीनता अधीनता को स्वीकार करती, परंतु भक्तों का भी तात्पर्य है, सभी भक्त समान नहीं है, सभी की भक्ति समान नहीं है और सबकी भक्तता भी समान नहीं है। कल भी इसी बात पर विवेचन हुआ था कि भक्ति के 6 लक्षण दिखाए गए, जो कि गुरु जी ने अभी अभी प्रवचन में थोड़ी देर पहले माधुर्य कानन विधि से बताया था कि भक्ति के 6 पत्ते, एक बीज भक्ति बीज अंकुरित हुआ, बीज के अंकुरित होने से 2 पत्ते निकलते हैं, फिर 2 पत्ते और निकलते हैं, इसके बाद फिर से 2 पत्ते और निकलते हैं, जबकि एक पौधा बड़ा होता है। इसका मतलब है क्लेशा भी सुबला मोक्ष लभता प्रेम सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेष आत्मा श्री कृष्ण दर्शनी चसा, जो कि क्लेश अग्नि भक्ति करने से समस्त प्रकार का क्लेश दूर होता है, समस्त प्रकार के पाप ताप अपराध और जितनी प्रकार के जो कुछ है सभी कुछ समाप्त हो जाता है। पाप राशि को इस तरह से वर्णन किया गया है जैसे कि सुबह का कुहरा होता है, कुहरा जो ओस गिरता है सुबह सुबह बाहों का मेरा घिरा हुआ है, सूरज के निकलते ही उसके ताप के और प्रकाश के साथ साथ कुहरा 1 मिनट के अंदर कहां मुड़ के चला गया कुछ भी पता ही नहीं। ऐसे साधक जीवन के जितने भी पाप राशि है, प्रारब्ध अपरारब्ध पाप पापी अभिन्न, ये सभी कुछ समूल नष्ट हो जाता है, भक्तों के जीवन में ये ठहरता नहीं ना कि रहता है। और क्या होता है, कुछ कर्म ऐसे भी होता है जैसे कल विवेचन भी किया गया था, कुछ अपराध के कारण फल भोग होता है और कुछ भगवत इच्छा से होता है। भगवान की इच्छा से जब फल भोग होता है कोई कष्ट आदि आया उसमें दुख की अनुभूति नहीं होती है, जीवन में सुख की अनुभूति होगी, दुख में भी कष्ट में भी सुख की अनुभूति होती है, ये भगवत इच्छा है, जैसे कि भरत महाराज जी के जीवन में हुआ। ये उनकी भगवान की इच्छा थी जीवों को दर्शाने के लिए, एक हिरण के प्रति उनकी आसक्ति लगा और ये आसक्ति के कारण 3 जन्मों में घूमना पड़ा। तो ये भगवत इच्छा है, ऐसे भक्तों के जीवन में कभी कांटा देकर के वे कांटा निकालते। हम संसार आसक्ति मोह को तोड़ना नहीं चाहते, छोड़ नहीं पाते हैं, परंतु भगवान क्या करते हैं, कांटे देकर के कांटा निकालते हैं, कभी कभी दुख कष्ट आदि दे करके छुड़ाते हैं विषय आसक्ति मोह, ये भगवत इच्छा से होता है। कभी कभी जीवन में अपराध के फल स्वरूप कष्ट भोग होता है, जैसे कि गजेंद्र का उपाख्यान में दिखाया गया या दक्ष प्रजापति के जीवन में भी दिखाए गए कि नारद जी के प्रति थोड़ी सी अवज्ञा की उन्होंने गाली दिया, हमारे बच्चों को साधु संन्यासी बना दिया, जाओ कभी भी एक किले एक साथ नहीं रह सकते हो, गोधन काल तो एक जगह टिक पाओगे। नारद जी हंसने लगे, आज तो बंधन से मैं छुटकारा मिला, बच गया, आज तो मैं सारी दुनिया में घूमूंगा और सभी जगह भगवान की कथाओं को सुनाऊंगा। इसलिए नारद जी खुश होकर के बिना बजाते हुए चल दिए सभी जगह को हरि कीर्तन करने लगे। परंतु दक्ष प्रजापति को जो अपराध बना, यही अपराध बढ़ते बढ़ते आगे चल करके इतना बड़ा विशाल और इतना महान बन गया कि शिव जी को देख करके रहा नहीं गया, जवान पैदा हो गया, शरीर से इतनी घटी आग निकली, गुस्से में गाली देते देते इतना अभिशाप दे दिया कि शिव जी को यज्ञ भाग नहीं मिला, बहुत सारा बवंडर हुआ और इसी कारण अंत में जा करके दक्ष प्रजापति का विनाश हुआ, उनके उनको बकरी का सिर मिला, जो कि बकरी का मुंड मिला, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होकर के भी जिनको जन्म मृत्यु नहीं है उनको जन्म और मृत्यु दोनों ही स्वीकार करना पड़ा किसी इस अपराध के कारण। अभी भी वैष्णवों ने प्रकाश चला अपराध पर कि प्रत्येक साधारण व्यक्ति को अपराध से बचना चाहिए, थोड़ी सी कोई अवज्ञा अनादर गलती और इसी अपराध के कारण वहां भयंकर हो जाता है। एक दिन वो विष वृक्ष बन करके जीवन में ऐसे आता है कि जन्म जन्मांतर के लिए घर्षित के लिए जाता है। परंतु धरती की एक विशेषता, एक महत्ता, चाहे कितना जन्म निकल जाए फिर भी भक्ति उखर करके फिर से आ जाती है। भक्ति कभी समाप्त नहीं होती, ढक जाती है। जैसे कि गजेंद्र के जीवन में हुआ, एक हाथी जो पहले जन्म में थोड़ी सी गलती की, जो कि ये अगस्त ऋषि को आदर सम्मान नहीं कर पाया, इसी कारण दूसरे जन्म में हाथी होकर के जन्म लेना पड़ा। हथिनी का संग मिला, बच्चे परिवारों के साथ में घूमता फिरता रहा, ऐसे घूमते फिरते भी जीवन बीत गया। अंत में मानव वंश ने पकड़ लिया, पानी में खींचा तनी, और बहुत लंबे समय तक खींचता ही रहा। अंत में उनके दरवाजे सब निराश होकर के छोड़ दिए। जब चले गए बेचारा भूता अनाश्री, हाल उल्लास करते हुए भगवान के चरणों में एक पुष्प लेकर के सूर से उठाया, आकाश में फेंका कि हे भगवान, आपके चरणों में यह पुष्पांजलि समर्पित हो, कृपया आप हमारा उद्धार। इतने में भगवान दौड़ करके आ गए, मां भरी कहते हुए उनके सिर पर हाथ धर दी और उनकी रक्षा की। जबकि उनके शरीर से आत्मा निकली, दिव्य देह धारण करके भगवान की स्तुति प्रार्थना की और भगवान के लोग को चले। मगरमच्छ को काट डाला, परंतु वो भी निकली, उसकी आत्मा निकली, दिव्य रूप धारण किया, गंधर्व रूप धारण करके गंधर्व लोग तो गया भगवान को प्रणाम करके। दोनों दोनों जगह पहुंची, क्यों? गजेंद्र ने पहले जन्म में भक्ति की थी, इसी कारण भक्ति कुछ समय के लिए दब गई। फिर से भक्ति खत्म होने के साथ साथ जब अपराध समाप्त हो गया, फिर भक्ति निकल करके आई, उस समय गजेंद्र दीपन धारण करके भगवान की स्तुति प्रार्थना करके भगवान के लोग हो गए। परंतु वो हूं गंधर्व, उससे पहले जन्म में कोई भक्ति की ही नहीं, किसी कारण भक्ति के अभाव से भगवान के लोग को जा नहीं सके। सारे जीवन में जब तक हम गुरु पदाश्रय करके साधन भजन नहीं करेंगे, तब तक हम भगवत सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। भाव की सिद्धि के बिना भगवत लोग की प्राप्ति भी संभव नहीं, तब तक भगवान इस संसार में हमें घुमाते रहेंगे। साधन जीवन में साधन करना पड़ेगा, इसलिए हर एक साधन को चाहिए कि अपराध से बचे। जो कि अभी अभी अपराधों के विषय में बयान हुआ है, इसी प्रकार इन अपराधों से मुक्त हो करके जब भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, तब इन छह प्रकार की छह लक्षणा भक्ति हृदय में प्रकाशित होगी, समस्त प्रकार का शुभ उदय होगा और सुदृढ़ भगवत भक्ति जो कि अतीव सुदुर्लभ है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, ज्ञातर सुलभा मुक्ति, मुक्ति यद्यपि पुण्यतर श्रेयम साधन शास्त्र हरि भक्ति सुदुर्लभा। यज्ञ के द्वारा हो वैभव सुलभ और ज्ञान के द्वारा मुक्ति सुलभ, हजारों साधन करने पर भी भक्ति दुर्लभ। बोले साधन करके हम साधन बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, महान त्यागी बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे, परंतु भाव का एक काम हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। यह होगा केवल ऐसे रसिक संत महान पुरुषों की अहित की कृपा से। इसलिए यह भक्ति कृपा सिद्ध है। इस प्रकार भक्ति का विवेचन हुआ है।